ईश्वर के बारे ज्ञान। ईश्वर कई उपायों से अपना ज्ञान हम लोगों के अंदर उद्बोधित करता है और हमें अपने समागम में लाता है। सारी प्रकृति हमारी ज्ञानेंद्रियों से उसके बारे आदिकाल से कहती आ रही हैं। उसके हाथ की सृष्टि से ही प्रेम और विभूति प्रकट हो रही है। उसे उदार हृदय निश्चय ग्रहण करेगा और विमुग्ध हो जाएगा। प्रकृति की वस्तुओं के द्वारा जो संदेश ईश्वर प्रेषित करता है, उसे सुनने वाले निश्चय ही सुनेंगे और समझेंगे। शश्च श्यामला भूमि, हरी वृक्षावलियां, कलित कलियां और सुशमित सुमन, सजल श्यामल मेघ, रिमझिम बरसता पानी, कलकल निनादिनी सरिता। आकाश के प्रभापूर्ण नक्षत्र हमारे हृदय में ईश्वर के संदेश भेजते हैं और अपने सृष्टा के परिज्ञान के लिए हमें निमंत्रण कर कहते हैं कि आइए हमें देखिए और ईश्वर को जो हमारे सृष्टा हैं समझ लीजिए। हमारे मुक्तिदाता ने अपने अमूल्य उपदेशों को प्रकृति की वस्तुओं से सजाया था। वृक्ष, विश्राम, तराई के राशि राशि पुष्पदल, पर्वत, झील और सज्जित दीप्त आकाश तथा दैनिक जीवन के साधारण व्यापार उनके उपदेश के साथ सदा जुटे रहते और सत्य तथा वास्तविक जीवन का सम्मिश्रण उपस्थित करते। इस सम्मिश्रण से लाभ यह होता कि उनके सत्य के उपदेश मनुष्य को अपने कार्य संकुल और श्रमपूर्ण जीवन में भी याद आ जाते थे। ईश्वर अपने पुत्रों द्वारा अपने कार्यों की प्रशंसा और समीक्षा सुनना चाहता है। वह ये भी चाहता है कि जिस सरल स्निग्ध तथा गंभीर रूप से हमारे पार्थिव घर को सुसज्जित किया है, उसकी मनोमुग्धकारी सुषमा से हम आनंद विभोर हो उठें। वह सौंदर्य का अनुरागी है और बाह्य सुषमा से अधिक वह चरित्र के सौष्ठव का प्रेमी है। वह ये चाहता है कि कुसुमों के कमनीय सौंदर्य और कोमल सरलता की तरह हम अपने चरित्र में पवित्रता का सौंदर्य और कोमल सरलता ले आएं। यदि हम सुनें तो ईश्वर की सृष्टि हमें आज्ञा पालन और विश्वास के अनेक उपदेश सुनाएं। उन तारों से लेकर जो अपनी कक्षा में शून्य अंबर के निस्सीम पथ पर युग युग से चलते आ रहे हैं, पृथ्वी के परमाणु कणों तक सृष्टि के सभी पदार्थों में ईश्वर की आज्ञा के पालन के उदाहरण दिखाई पड़ सकते हैं। ईश्वर सबों पर ध्यान देता है और जितनी भी वस्तुएं उसने सृष्टि की सर्वों का पालन पोषण करता है। इस अनंत विश्व के राशि राशि ग्रहमंडल और नक्षत्र मंडल का जो संरक्षक है, वही उस छोटी सी गौरैये की आवश्यकता को पूर्ण करता है जो निडर बैठकर उस छोटी डाली से अपने सरल एवं सरस संगीत सुनाती है। जब मनुष्य अपने दैनिक श्रम में व्यस्त होने जाते हैं और जब वे प्रार्थना में तल्लीन रहते हैं, जब रात्रि में विश्राम करते हैं और जब प्रातःकाल जाग उठते हैं, जब वैभवशाली अपने राजमहल में दावत करता है अथवा जब दरिद्र किसान अपने बच्चों को सूखी रोटी बांटता है, इन सभी समयों में ईश्वर के द्वारा इन सारे प्राणियों का निरीक्षण होता है। कोई ऐसी आंसू नहीं जो ईश्वर की दृष्टि में नहीं पड़ती, कोई ऐसी मुस्कुराहट नहीं जिस पर वह ध्यान नहीं डालता। यदि हम लोग इन बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास करें तो सारी व्यर्थ की दुश्चिंताएं मिट जाएं। तब हमारे जीवन में इतनी उदासी नहीं रहे, क्योंकि सारे काम तो उसके हाथों सौंप रहे और वह चिंताओं और कार्यों के भार से न तो घबराता है और न उनकी गुरुता से ऊबता है। ऐसा करने पर ही हमारी आत्मा में वह शांति आएगी जिसका स्वाद अनेकों ने नहीं चखा। जब आपकी ज्ञानेंद्रियां इस लोक की सुषमा पर मुग्ध होती हैं, तो कल्पना कीजिए कि उस लोक की सुषमाश्री पर आप किस तरह लट्टू हो जाएंगे। वहां की श्री सुषमा उज्ज्वल, निष्कलंक और अमृत है। वहां के सौंदर्य में श्राप की कालिमा नहीं। आपकी कल्पना उस स्वर्गीय गृह की इतनी सुखद होगी कि आप इसी में रत रहेंगे, किंतु वास्तविक स्वर्गीय गृह आपकी कल्पना से अधिक मधुर, सुंदर और आलोकपूर्ण है। इस लोक की सुषमा में हम ईश्वर की विभूति को एक झलक मात्र देखते हैं। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। 1 कुरिन्थियों 2 आयत 8। कवि और प्रकृति, विज्ञान के विशारद। प्रकृति के बारे बहुत कहेंगे, किंतु यदि प्रकृति की मनोमुग्धकारी सुषमा राशि का कोई आनंद लेता है तो वह ईसाई ही है, क्योंकि वह उन पदार्थों में ईश्वर की निरागता और कौशल पहचान सकता है, और वही पुष्पों, झाड़ियों और वृक्षों में ईश्वर का प्रेम देख सकता है। जो व्यक्ति पर्वत, तराई, नदी और समुद्र को मनुष्य के प्रति परमेश्वर के प्रेम के द्योतक स्वरूप नहीं मानता है, वह इन वस्तुओं की महत्वता को पूर्णतः अनुभव नहीं कर सकता है। ईश्वर हम लोगों में अपने ऐश्वर्य कार्यों के द्वारा अथवा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में प्रकाश और प्रभाव के द्वारा बातें करता है। अपनी परिस्थितियों में चतुर्दिक होने वाले परिवर्तन में कितने उपदेश छुपे पड़े हैं। यदि हमारा हृदय ग्रहण कर सके तो इन अमूल्य उपदेश पालें। स्तोत्रकर्ता ने ईश्वर की इस लीला के बारे कहा है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। भजन संहिता 30:4। जो कोई बुद्धिमान हो तो इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों को विचारेगा। भजन संहिता 106:43। ईश्वर अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से संभाषण करता है। यहां हम उसके चरित्र को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, वहां हम उसके मनुष्य के प्रति व्यवहार जान सकते हैं। मुक्ति के महान कार्य भी हम यहीं पहचान पाते हैं। यहां हमारे पूर्वजों, भविष्यद्दूताओं और अन्य पवित्र लोगों की जीवनी और इतिहास है। वे भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे। याकूब 5:17। वे भी संघर्ष करते हुए, विफल मनोरथ होते हुए हम लोगों की तरह ही रहे। उन्होंने ईश्वर के अनुग्रह से विजय पाई। उन्हें सफल होते देख हम लोगों में भी उत्साह भर आता है और पवित्रता के संग्राम में हम पुनः भिड़ जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं कि उनके अनुभव कितने अमूल्य थे, उन्हें कितनी प्रभावपूर्ण जीवन, ज्योति और जागृति मिली, और अनुग्रहित हो उन्होंने कैसे कल्याणप्रद काम संपादित किए, तो हम भी समर्थ हो जाते हैं। जिस आत्मा से वे अनुग्रहित हो गए, उसी आत्मा से हमारे हृदय में भी उत्साह और शक्ति की चमक फैल जाती और हम में भी यह लालसा हो आती है कि हम उनके अनुरूप हो जाएं और उन्हीं की तरह ईश्वर के साथ साथ चलें। यीशु ने पुराने नियम में जो कहा था वह नए नियम पर और भी अधिक कथ रूप में लागू होता है। उन्होंने कहा था, ये वही है जो मेरी, मुक्तिदाता की, जिस पर हमारा अनंत जीवन निर्भर करता है, गवाही देता है। यूहन्ना 5:38। सारी बाइबल ख्रीष्ट के बारे गुणगान करता है, सृष्टि के प्रथम उल्लेख से, क्योंकि जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई, लेकर अंतिम वचन तक देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। हम केवल उनके कार्यों का वर्णन पढ़ते और उन्हीं की वाणी सुनते हैं। यदि आप मुक्तिदाता को पहचानना चाहते हैं तो पवित्र शास्त्र का मनन कीजिए। अपने हृदय के कोने काने में यीशु के शब्द भर दीजिए। आपकी भारी तृष्णाओं को शांत करने के लिए वे जीवनमय जल हैं, वे स्वर्गीय भोजन हैं। यीशु ने तो यह घोषणा की है, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। फिर वे इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। यूहन्ना 6:53-63। हमारे शरीर उन्हीं वस्तुओं से बनते हैं जिन्हें हम खाते पीते हैं। अब जो बात प्रकृति रूप में ठीक है वही आध्यात्मिक विषय में भी लागू है। जिस विषय पर हम एकनिष्ठ चिंतन करेंगे, जिसकी साधना में हमारे हृदय और मस्तिष्क लगा रहेगा, वही हमारे आध्यात्मिक स्वभाव में शक्ति और सौम्य भरेगा।
मुक्ति का विषय ऐसा मधुर विषय है कि दूतगण इस पर सदा ध्यान देते हैं। मुक्ति एक ऐसी मधुर वस्तु है कि मुक्ति प्राप्त लोगों के लिए वह अनंत काल तक सारे विज्ञान का केंद्र और सारे संगीत का स्रोत रहेगा। अतएव उस पर गंभीर चिंतन करना और मनन करना क्या अनुचित है? यीशु की निस्सीम करुणा और प्रेम, हमारे लिए उनका अद्वितीय आत्मोत्सर्ग आदि ऐसी बातें हैं जिन पर गंभीर चिंतन करना हमारा कर्तव्य है। हमें सदा अपने प्रिय त्राता और मध्यस्थ के चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। हमें सर्वदा उनके संदेश और उद्देश्य का गंभीर विवेचन करना चाहिए, जिन्होंने अपने मानव समूह को पाप से बचने के लिए जगत में पदार्पण किया था। जब हम इन स्वर्गीय विषयों पर एकनिष्ठ चिंतन करेंगे तो हमारा विश्वास प्रगाढ़ होगा, प्रेम गंभीर होगा और हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर को अधिक से अधिक स्वीकार होंगी, क्योंकि उन प्रार्थनाओं में अधिक से अधिक विश्वास और प्रेम भरे रहेंगे। तभी प्रार्थनाएं चमत्कारपूर्ण और स्पष्ट रहेंगी। यीशु पर तब और भी गहरा भरोसा रहेगा और उनकी शक्ति का नित्य जीवित अनुभव होगा कि जो उसके पास आते हैं उनका वह पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। अपने मुक्तिदाता का हम जितना ध्यान लगाएंगे उतना ही अधिक हम अपने में परिवर्तन लाना चाहेंगे और अपने को उनकी पवित्रता के अनुरूप चाहेंगे। जिस मसीह को हम भजते हैं उनके जैसा हो जाने की भूख और प्यास हमारी आत्मा में ज्वालाएं उठाएगी। यीशु पर विचार जितनी तेजी से केंद्रित होंगे उतनी ही तत्परता से हम उनका वर्णन दूसरों के समक्ष करेंगे और संसार में उन्हें प्रचारित करेंगे। बाइबल केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं लिखा गया था, बल्कि वह तो साधारण जनता के लिए बना था। वे बड़ी शिक्षाएं जो हमारे उद्धार के लिए आवश्यक हैं, दोपहर की धूप की नाई इतनी स्पष्ट कर दी गई है कि उसे पढ़कर कोई भी अपने सत्य के पथ से भटक नहीं सकता। हां, यदि वह ईश्वर की प्रकट इच्छा और आदेश के अनुसार न चलकर अपने विचार से चले तो बात दूसरी है। पवित्र शास्त्र के बारे दूसरा आदमी हमें जैसा समझा दे वैसा ही समझ लेना उचित नहीं। हमें तो चाहिए कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन को खुद पढ़ें और खुद समझें। यदि दूसरों की समझ से ही हम समझने के आदि हो जाएंगे तो हमारी शक्ति ही पंगु हो उठेगी और योग्यता नष्ट हो चलेगी। ऐसा करने से मस्तिष्क की शक्तियों के विकास के लिए यदि ऐसे गंभीर और रोचक विषय न मिले और उनका नित्य व्यवहार न हो तो ईश्वर के वचन के गूढ़ अर्थ को समझने की शक्ति न रहेगी। मस्तिष्क तभी विकसित होगा जब उसे बाइबल के विषयों के संबंध पता लगाने में, एक पद से दूसरे पद के साथ तुलना और समीक्षा करने में तथा आध्यात्मिक वस्तुओं का अन्य आध्यात्मिक पदार्थों से मिलान करने में लगाया जाए। बुद्धि के विकास के लिए धर्मशास्त्र के अध्ययन के सिवा और कोई अन्य साधन उतना लाभप्रद नहीं। कोई भी पुस्तक या ग्रंथ इस प्रकार से विचारों को उन्नत और शक्तियों को बल और स्फूर्ति प्रदान नहीं कर सकता जैसा बाइबल का सार्वभौम और सनातन सत्य कर सकता है। ईश्वर के वचनों का अध्ययन और अनुशीलन करने से मनुष्यों का हृदय इतना उदार और विशाल, मस्तिष्क इतना सहिष्णु और करुणापूर्ण, चरित्र इतना उच्च और भव्य, उद्देश्य इतने मंगलमय और दृढ़ हो जाएंगे कि जिसका बराबरी का होना आजकल दुर्लभ है। लेकिन धर्मशास्त्र की उड़ती नजर से पढ़ाई से लाभ प्राप्त करना असंभव है। आप सारा बाइबल शुरू से आखिर तक चाट लेंगे लेकिन कहीं सौंदर्य की झलक अथवा गूढ़ रहस्य का उद्घाटन न पाएंगे। इसके उल्टे आप एक ही वाक्य पढ़कर उसका मनन और चिंतन करें और गूढ़ अर्थ हृदयंगम कर मुक्ति के मार्ग में उसका क्या उद्देश्य है यह समझ लें तो निरुद्देश्य और निरर्थक कई परिच्छेद पढ़ जाने से आपको अधिक लाभ होगा। अपना बाइबल अपने पास सदा रखिए, जहां मौका मिले पढ़ जाइए, उसके पदस्थल याद रख लीजिए। सड़क पर चलते हुए भी आप एक दो पदस्थल पढ़कर उसका मनन कर सकते हैं और उसे स्मृति पटल पर अंकित भी कर ले सकते हैं। बुद्धि और विवेक ऐसे नहीं आते जब तक पूरी लगन से चेष्टा न की जाए और पूरी प्रार्थना की आकुलता से पठन और मनन न होगा। ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। धर्मशास्त्र के कुछ भाग तो ऐसे सरल और सहज हैं कि वे भ्रांति से कोसों दूर हैं, किंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनके अर्थ ऊपर में ही पढ़े नहीं मिलेंगे, उन्हें मनन करना ही होगा। धर्मशास्त्र के एक पद की तुलना दूसरे पद के साथ की जानी चाहिए। धर्मशास्त्र के अंतर में प्रवेश करने के लिए अनुसंधान और खोज करनी होगी और साधना में लीन रहना ही पड़ेगा। ऐसे पाठ से ही उचित पुरस्कार प्राप्त हो सकता है, जैसे भूगर्भ विज्ञान में निपुण लोगों को खान के अंदर जमीन में छिपे हुए बहुमूल्य धातुओं के नस मिल जाती है। उसी प्रकार जो ईश्वर के शब्दों के भीतर बैठकर गहरे पानी के नीचे खोजता है वो अनेक ऐसे बहुमूल्य सत्य के रत्न प्राप्त करता है जिन्हें असावधानी से पढ़ने वाले लोग देख भी नहीं सकते।
स्फूर्ति और जीवन ज्योति से भरे सत्य के वचन जब हृदय में अंकित हो जाएंगे तो वे जीवन की फूटती हुई निर्झरणी की तरह रहेंगे। बिना प्रार्थना के बाइबल पढ़ना सर्वथा अनुचित है। इसके पृष्ठों को खोलने के पहले हमें पवित्रात्मा के प्रकाश की याचना कर लेनी चाहिए। याचना करने से प्रकाश निश्चय प्राप्त होगा। जब नतनाएल यीशु के पास आया तो मुक्तिदाता ने कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनाएल ने पूछा, तू मुझे कहां से पहचानता है? यीशु ने उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ तले था तब मैंने तुझे देखा था। यूहन्ना 1:47-48। इसी प्रकार यीशु हमें भी अपने प्रार्थना के गुप्त स्थानों में देखेंगे। यदि हम प्रार्थना करेंगे और उनसे प्रकाश की याचना करेंगे तो हम किसी भी गुप्त स्थान में क्यों न हों, वे हमें निश्चय देख लेंगे और प्रकाश देंगे ताकि हम सत्य को जान सकें। जो लोग विनम्र होकर ईश्वरीय नेतृत्व की याचना करते हैं उनके साथ आलोकित स्वर्गलोक के दूतगण चलते हैं। पवित्र आत्मा मुक्तिदाता को उन्नत एवं भव्य बनाता है। ख्रीष्ट को, उसकी धार्मिकता की पवित्रता को तथा उसके द्वारा हमारा जो महान उद्धार हुआ है उसे प्रकट करना उसी का काम है। यीशु ने कहा है, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 16:14। केवल सत्य का आत्मा ही हमें ईश्वरी सच्चाई को अच्छी तरह सिखला सकता है। ईश्वर मनुष्य जाति पर कितनी श्रद्धा करता है कि उसने अपने प्रिय पुत्र को बलिदान करने के लिए भेजा और अपने आत्मा को वो शिक्षा देने और सत्य के मार्ग पर बराबर चलने के लिए भेजता है।